जिम्नोस्पर्म गैर फूल वाले पौधे हैं जो उपराज्य एम्बोफाइटा से संबंधित हैं। बीज अंडाशय या फल में संलग्न नहीं होते हैं। वे जिम्नोस्पर्म की पत्ती जैसी संरचनाओं की सतह पर उजागर होते हैं। उन्हें कॉनफेरोफाइटा, साइकाडोफाइटा, जिंकगोफाइटा और गनेटोफाइटा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिम्नोस्पर्म क्या है? शब्द जिम्नोस्पर्म ग्रीक शब्द जिम्नोस नग्न और स्पर्मा बीज से आया है, इसलिए इसे नग्न बीज के रूप में जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म बीज पैदा करने वाले पौधे हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म के विपरीत वे बिना फल के बीज पैदा करते हैं। ये पौधे शल्कों या पत्तियों की सतह पर या डंठलों के अंत में शंकु जैसी संरचना बनाते हुए विकसित होते हैं। जिम्नोस्पर्म साम्राज्य प्लांटे और उपराज्य एम्ब्रियोफाइटा से संबंधित हैं। जीवाश्म साक्ष्यों से पता चलता है कि उनकी उत्पत्ति लगभग 390 मिलियन वर्ष पहले पैलियोज़ोइक युग के दौरान हुई थी। मूल रूप से जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें एंजियोस्पर्म के विपरीत अंडाशय अंडाशय की दीवार के भीतर संलग्न नहीं होते हैं। यह निषेचन से पहले और बाद में तथा बीज के रूप में विकसित होने से पहले खुला रहता है। जिम्नोस्पर्म का तना शाखित या अशाखित हो सकता है। मोटी छल्ली सुई जैसी पत्तियां और धंसे हुए रंध्र इन पौधों में जल की कमी की दर को कम करते हैं। जिम्नोस्पर्म के परिवार में कॉनिफर साइकेड गनेटोफाइट्स और जिंकगोफाइटा डिवीजन और जिंकगो बिलोबा की प्रजातियां सम्मिलित हैं। जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं जिम्नोस्पर्म की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक, वे फूल पैदा न ही करते। दो, फल के अंदर बीज नहीं बनते, वे नग्न हैं। तीन, ये ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बर्फबारी होती है। चार, उनमें सुई जैसी पत्तियां विकसित होती हैं। पाँच, वे बारहमासी या लकड़ी वाले होते हैं जो पेड़ या झाड़ियां बनाते हैं। छह, उन्हें अंडाशय शैली और कलंक में विभेदित नहीं किया जाता है। सात, चूंकि वर्तिकाग्र अनुपस्थित है वे सीधे हवा द्वारा परागित होते हैं। आठ, नर गैमेटोफाइट्स दो युग्मक पैदा करते हैं लेकिन उनमें से केवल एक ही क्रियाशील होता है। नौ, वे प्रजनन संरचनाओं के साथ शंकु बनाते हैं। दस, बीजों में भ्रूणपोष होता है जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए भोजन का भंडारण करता है। ग्यारह, इन पौधों में संवहनी ऊतक होते हैं जो पोषक तत्वों और जल के परिवहन में मदद करते हैं। बारह, जाइलम में वाहिकाएं नहीं होती हैं और फ्लोएम में कोई साथी कोशिकाएं और छलनी नलिकाएं नहीं होती हैं। जिम्नोस्पर्मों का वर्गीकरण जिम्नोस्पर्मों को नीचे दिए अनुसार चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक, साइकाडोफाइटा साइकेड्स द्विनी होते हैं, अर्थात व्यक्तिगत पौधे या तो सभी नर या मादा होते हैं। साइकेड्स बीज देने वाले पौधे हैं जिनके अधिकांश सदस्य अब विलुप्त हो चुके हैं। वे जुरासिक और अंतिम ट्राइसिक युग के दौरान फले फूले थे। आजकल पौधों को अतीत के अवशेष माना जाता है। इन पौधों में आमतौर पर बड़े मिश्रित पत्ते, मोटे तने और छोटे पत्ते होते हैं जो एक ही केंद्रीय तने से जुड़े होते हैं। इनकी ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक होती है। साइकेड्स आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों ने शुष्क परिस्थितियों को अपना लिया है और कुछ ने ऑक्सीजन रहित दलदली वातावरण को भी अपना लिया है। दो, जिंकगोफाइटा जिम्नोस्पर्मों के एक अन्य वर्ग जिंकगोफाइटा में केवल एक जीवित प्रजाति है। इस वर्ग के अन्य सभी सदस्य अब विलुप्त हो चुके हैं। जिंकगो पेड़ों की पहचान उनके बड़े आकार और पंखे जैसी पत्तियों से होती है। इसके अलावा जिंकगो पेड़ों का औषधि से लेकर खाना पकाने तक में बड़ी संख्या में उपयोग होता है। जिंकगो की पत्तियों का सेवन अल्जाइमर जैसे स्मृति संबंधी विकारों के इलाज के रूप में किया जाता है। जिंकगो के पेड़ प्रदूषण के प्रति भी बहुत प्रतिरोधी हैं और वे बीमारियों और कीड़ों के संक्रमण के प्रति लचीले हैं। वास्तव में वे इतने लचीले हैं कि हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरने के बाद छह जिंकगो पेड़ विस्फोट के एक या दो किलोमीटर के दायरे में जीवित रहने वाले एकमात्र जीवित प्राणी थे। तीन, गनेटोफाइटा जिम्नोस्पर्म के किसी भी अन्य सदस्य की तरह गनेटोफाइट्स भी अतीत के अवशेष हैं। आज इस प्रजाति के केवल तीन सदस्य मौजूद हैं। नीटोफाइट्स में आमतौर पर उष्णकटिबंधीय पौधे पेड़ और झाड़ियां सम्मिलित होती हैं। इनकी विशेषता फूलदार पत्तियां होती हैं जिन पर मुलायम परत होती है। इस लेप से एंजियोस्पर्म के साथ पैतृक संबंध का पता चलता है। नीटोफाइट्स इस वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि उनके जाइलम में वाहिका तत्व होते हैं। चार, कॉनफेरोफाइटा ये जिम्नोस्पर्म परिवार में सबसे अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं। वे सदाबहार हैं, इसलिए वे सर्दियों में अपने पत्ते नहीं गिराते। इनमें मुख्य रूप से नर और मादा शंकु होते हैं जो सुई जैसी संरचना बनाते हैं। शंकुधारी वृक्ष आमतौर पर समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत तापमान 10 होता है। विशाल सिकोया, पाइन्स, देवदार और रेडवुड कॉनिफर के उदाहरण हैं। जिम्नोस्पर्म जीवन चक्र। जिम्नोस्पर्मों का जीवन चक्र अगुणित और द्विगुणित दोनों होता है, अर्थात वे पीढ़ियों के प्रत्यावर्तन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। उनके पास एक स्पोरोफाइट प्रमुख चक्र है। गैमेटोफाइट चरण अपेक्षाकृत छोटा होता है। प्रजनन अंग आमतौर पर शंकु होते हैं। नर शंकु इनमें माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं जिनमें माइक्रोस्पोरंगिया होता है। माइक्रोस्पोरेगियम अगुणित माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करता है। कुछ सूक्ष्म बीजाणु विकसित होकर नर युग्मक बनते हैं जिन्हें परागकण कहते हैं और शेष नष्ट हो जाते हैं। मादा शंकु मेगास्पोरोफिल्स एकत्रित होकर मादा शंकु बनाते हैं। उनके पास मेगास्पोरेगियम युक्त बीजाणु होते हैं। यह अगुणित मेगास्पोर और एक मेगास्पोर मात्र कोशिका का निर्माण करता है। पराग हवा या किसी अन्य परागण एजेंट के माध्यम से अंडे तक पहुंचता है और परागकण एक शुक्राणु छोड़ता है। नर और मादा गैमेटोफाइट्स के नाभिक आपस में जुड़कर युग्मनज बनाते हैं। इसे निषेचन के रूप में जाना जाता है। बीज तराजू के रूप में दिखाई देते हैं जिन्हें जिम्नोस्पर्म के शंकुओं पर देखा जा सकता है। जिम्नोस्पर्म उदाहरण। जिम्नोस्पर्म के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। साइकस्पाइनस अरोश्रिया थिया सेड्रिस पिसिया एबीस लारेक्स अभ्यास। प्रश्न 1. जिम्नोस्पर्म क्या है? 2. जिम्नोस्पर्म को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? 3. जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं लिखिए। 4. कॉन्फिरोफाइटा क्या है?